Thank you. तो भगवत्य अन्य कोई मार्ग नहीं है। भक्त ने लोग पढ़ना जारी रखा। स्वामी इस समय लस अंतरिक्ष में रहते हैं और वहां अपने अनुयायियों को प्रशिक्षित देते हैं। उनकी आय उनकी पुस्तकों पत्रिकाओं और अगरबत्तियों की बिक्री से होती है। वे कहते हैं कि अनेक उनके लगभग 10,000 अनुयायी हैं। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत अधिक शिष्य नहीं है। प्रथम श्रेणी का पुरुष पाना कठिन है। कितने दुख की बात है कि जनसंख्या में आधी स्त्रियां हैं। प्रभुपाद ने कहा तो यह बुरा नहीं है। और उन्होंने कृष्ण भावना संघ में स्त्रियों के लिए अपना सकारात्मक प्रस्ताव सामने रखा। हमारी दीदी डलास स्कूल में प्रथम श्रेणी के पुरुष पैदा करना होनी चाहिए और हम लड़कियों को दो बातें सिखाएंगे, अपने पति के प्रति सत्यनिष्ठ और विश्वास योग्य कैसे बना जाए और बढ़िया भोजन कैसे बना जाए। यदि उनमें ये दो योग्यताएं आ जाती है तो उनके लिए अच्छा पति ढूंढने की गारंटी मेरी होगी। इसलिए ऐसा करने की कोशिश करो। बाद में प्रभुपाद का साथ देने के लिए भक्तगण कोई कारों में पहुंच गए। लगभग 1 दर्जन 85 शिष्य ठीक उनके पीछे पीछे चलने लगे और प्रभुपाद लेक मिशिगन के किनारे शायद उसी वृक्ष से आच्छादित मार्ग पर आगे बढ़ते गए। मार्ग की चौड़ाई इतनी थी कि केवल कुछ ही शिष्य अगल बगल चल सकते थे, इसलिए अधिकांश शिष्य मार्ग के बाहर की घास पर चलने लगे ताकि वे श्री प्रभुपाद की बात सुन सकें। प्रभुपाद कह रहे थे सामान्य शिक्षा पर्याप्त है, ABCD उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वैश्या बन जाओ। कितनी बेहुदा बात है, वैश्या बनने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं। इसलिए नला संकुल में कोई समस्या नहीं है। लड़कियों को शिक्षा दो कि विश्वास योग्य सत्यनिष्ठ पत्नी कैसे बना जाए, कैसे अच्छा भोजन बनाया जाता है, उन्हें कई तरह के भोजन बनाना सिखाओ। क्या वह बहुत कठिन है? ये दो ही योग्यताएं हैं लड़कियों की। हमारे यहाँ बहुत सी कहानियां हैं, जैसे दमयंती पार्वती सीता की कहानियां। ये इतिहास की महान महिलाएं हैं। हमारी लड़कियों को उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए और 15-16 साल की अवस्था होने तक उनका विवाह हो जाना चाहिए। यदि ये योग्य हैं तो उनके लिए उपयुक्त पति पाना कठिन नहीं होगा। यदि कोई स्त्री पतिव्रता है तो वह सुंदर ना ही हो तो भी अपने पति की प्रेम भाजन होगी। इसलिए उन्हें उसी तरह प्रशिक्षित करो। वापस लौटने से पहले प्रभुपाद रुक गए और उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोग घास पर बैठ जाएं। एक भक्त ने अपने तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने विदेश में सवेरे सवेरे एक पार्क में गए, लोयला पार्क। तो एक आपकालीन संस्करण का पेपर होगा जिसका नाम था शिकागो ट्रिब्यून, तो मणि पेपर आया था। उसमें से कुछ लेख निकला, उसको पढ़ रहे थे और पढ़ में वो लेख में इसे लिखा था, आरंभ कहा गया था कि क्षमा करें कहानी अच्छी नहीं लिखी गई है। तो लिखी कर लिखा लिखा था कि अपने स्कूल पहले मैं क्षमा लिया था। तो लेख में क्या लिखा था उसको पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद जी के बारे में लिखा उससे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के संस्थापक आचार्य 70 वर्षीय कृष्ण भावना देशी भक्ति विधान संघ प्रभुपाद ने बुधवार को कहा कि संघ का उद्देश्य भाव भक्ति और भौतिक पदार्थ के त्याग द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है। प्रभुपाद ने आपके अपने सिद्धांत को कहा था, उसको उद्धृत किए हैं। और स्वामी जी कैसे बैठे थे, स्वामी पालथी मारकर कीमती देख रही एक गद्दी पर बैठे थे, चारों ताजे फूलों की मालाओं था, ये सब लिखने के बाद आपने जीवन दर्शन की व्याख्या स्वामी जी कर रहे थे, तो और बीच बीच में प्रभुपाद जी की गोल्डन वॉच बने थे उस पर देख रहे, तो लेकर जारी रहा इस भाव को अंतर्निहित करता हुआ श्री प्रभुपाद कि अंध पुरुष वादी थे। उन्होंने कहा कि उनकी वर्ग व्यवस्था में स्त्रियों का पुत्री और पत्निया के रूप में अतिरिक्त तो कोई स्थान नहीं, ये आक्षेपता प्रभुपाद जी के ऊपर लेखे में प्रभुपाद जी का से वर्णन किए थे। मेन टारगेट प्रभुपाद जी के ऊपर आक्षेप किया गया था लेख में कि वो इतने बड़े स्वामी इतने बड़े से काम करते, लेकिन उनके जो विचार है उसमें ये दोष है कि दोष के कारण प्रभुपाद जी के दोष थे कि अंधा पुरुषवादी थे, अंधे को पुरुष को सपोर्ट करने वाले थे, ये दोष दे रहे थे प्रभुपाद जी को, अंधे पुरुष वाले थे, ब्लाइंड कलर ऑफ मैन इसी को बोलते हैं। तो क्यों पुरुष फल करते हैं कि उन्होंने कहा कि उनके वर्ग व्यवस्था में उनकी जो डिवीजन वर्ग व्यवस्था है उसमें स्त्रियों को केवल पुत्री और पत्नी और मां के अतिरिक्त कोई दूसरा स्थान ही नहीं, दूसरा स्थान नहीं रखने को नहीं है स्त्रियों के लिए, एक अनविहारी स्त्री अनुमानतः उनके लिए वर्ग ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी बैठे थे पिछले सीट में, प्रभुपाद जी ने इस बात को सुन करके उनके प्रति वाक्य लगा गया था कि अंधे पुरुषवादी है स्त्रियों को केवल यही वर्गीकरण से अलावा कुछ नहीं समझते, स्थान ही नहीं है। तो क्या क्या स्थान दिए प्रभुपाद जी ने, अपनी बेटी बस, उसके अलावा और स्थान इसलिए उनको बड़े दोष दिया जाता है अंधे पुरुषवादी है। तो प्रभुपाद जी ने उसको सुन करके मंत्र मंत्र मुस्कुराए और बोले कि वह सही बात है, फिर बोले जो दोष दे रहा है वो एक वेश्या है, स्थान में लिया नहीं। बस यदि आप वर्गीकरण करते हैं तो भविष्य है, अन्य कोई मार्ग नहीं। तो भक्त ने लेख पढ़ना जारी रखा, स्वामी इस समय लस अंतस में रहते हैं और वहां अपने अनुयायियों को प्रशिक्षण देते हैं, और जो दूसरा भक्त लेख लिखी थी वो लेख आगे भी पढ़ते रहे कि स्वामी जी ने लस अंतस में रहते हैं और अपने अनुयायियों को प्रशिक्षण देते ट्रेनिंग देते हैं। उनकी आय उनकी इनकम क्या है, उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैगजीन और इंसान अगरबत्ती को बेच करके उनकी इनकम होता है, लगभग 10,000 अनुयायी हैं उनके। तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ज्यादा अधिक फल शिष्य नहीं है और प्रथम श्रेणी का पुरुष पाना कठिन है, ये शिष्य क्यों ज्यादा नहीं कि अच्छा पुरुष पाना आजकल दुनिया में बड़े कठिन है, कितने दुख की बात है कि जनसंख्या में आधी स्त्रियां हैं। उन्होंने लिखी है प्रभुपाद जी के साथ कहे होंगे कि आजकल के अच्छे पुरुष पाना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, क्योंकि पूरे समाज के लोग संख्या में आधे स्त्रियां हैं। तो उसको सुनकर के प्रभुपाद ने कहा तो क्या तो यह बुरा नहीं है, और उन्होंने कृष्ण भावना संघ में स्त्रियों के लिए अपना सकारात्मक प्रसाद सामने रखा। तो प्रभुपाद जी ने स्त्रियों के लिए पचनी गुण में क्या कहते हैं सकारात्मक भाव रखकर क्या कहे कि हमारे जो दलास में स्कूल है, प्रभुपाद जी समय में स्कूल खोले थे उन्होंने गुरुकुल दलास में, तो बोलते इस गुरुकुल में प्रथम श्रेणी के पुरुष प्रजा कर्मी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास ज्ञान प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या ना हम लड़कियों को दो बातें सिखाएंगे, तो डला स्कूल में लड़कियां थी इसमें मतलब, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए तो उपाय चाहते बोले दो ही बात सिखाएंगे लड़कियों को, केवल दो ही बात सीखने से उनके जीवन धन्य हो जाएगा सफल हो जाएगा। क्या दो बातें हैं, प्रथम बात है कि अपने पति के प्रति सत्यनिष्ठ और विश्वास योग्य किसी बना जाए, और दूसरे है कि बढ़िया भोजन किसी बना जाए, दो ही कोर्स उनको करना है, बाकी ग्रेजुएशन पीजी की इधर उधर कुछ नहीं करना है। ये प्रभुपाद जी के मकबरे में नहीं है, उसने बोलते हैं कि स्त्रियों को अगर दो ही कोर्स करना हो कि इतने भली प्रकार से अपने पति के विश्वास पात्र बने और सत्यनिष्ठ बने और उनके साथ अच्छा तो बढ़िया भोजन बनाने सीख जाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर यदि उनमें दो योग्यताएं आ जाती है, अगर कोई लड़की इस दो को सबमिट करता है तो उनके लिए एक अच्छा पति ढूंढने की गारंटी मिली है। तो बस अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, जवाबदारी लेते हैं कि मैं खुद उनके लिए पति ढूंढ कर दूंगा, अच्छा पति, उनको केवल दो क्वालिफिकेशन हासिल करना। ये नहीं कह रहे कि भाई ये करो ये करो ग्रेजुएशन करो ये करो, नहीं है, केवल दो ही क्वालिफिकेशन उनको जरूरी है। क्या? एक सत्यनिष्ठ सेवा परायण पतिव्रता अपने पति के होना चाहिए, और दूसरा इसलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया खाना बनाने का होना चाहिए। बस दो ही आवश्यकता है इसमें, एक दो के कारण हमको बहुत अच्छे पति प्राप्त होंगे, और निश्चित बोले देखने में भले गुरु क्यों ना हो और कुछ भी गुण क्यों ना नहीं हो क्यों ना हो, लेकिन यही दो गुण के कारण उन्हें पति के प्रेम बनाना पड़ सकते हैं। और आजकल समाज में हम देखते हैं यही दो ही गुणों को छोड़कर बाकी गुण से बनाना चाहते हैं, यही गुण। अभी अभी दो दिन पहले श्रीराम नवमी का सीता जी के चरित्र आप लोग समाप्त किए होंगे, और आज के दिन भी उतनी एकादशी मोहिनी जी के नाम, मोहिनी भगवान स्वयं मोहिनी बन गए, मतलब भगवान पुरुष सही है, परम पुरुष है, लेकिन उन्होंने मोहिनी बने कब बने, जब अमृत मंथन चल रहा था, अमृत के लिए सागर मंथन हो रहा था, तो वहां पे समुच्चय देवता समुच्चय असुर मिल करके पूरा जो कंबाइन प्रोजेक्ट तो कंबाइन प्रोजेक्ट था, उसमें दोनों मिलकर मिल करके और उसमें बहुत प्रकार का अड़चन बहुत तकलीफ आया था, बहुत बहुत असुविधा आया था, लेकिन असुविधा को भगवान साथ है इसने सब उसको तकलीफ दूर किए। अमृत के लोभ से मंथन चालू किए, लेकिन अमृत के दूर के बाद मिला क्या, बीस सबसे पहले किसी के काम प्रोजेक्ट शुरू किए थे अमृत के लिए, पर अपोजिट निकला। हम सीख सकते हैं कभी कोई मनुष्य अपने जीवन में अमृतत्व प्राप्त करना चाहता है उसके लिए मिलित उद्यम चाहिए। आपने जो जन्मजात शत्रु उनके साथ ही हाथ मिलाना पड़ेगा, वो मिलने आएंगे कैसे, अमृत का प्रभोजन रखो वो मिलने आएंगे, वो मिल करके अगर प्रयास भी करो ये नहीं कि आसान से काम बन जाएगा, भगवान प्रभोजन दिए साथ हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आसान काम करने जाए सबसे पहले उसका परिणाम ही सामने आएगा, ये नियम है, बुरा होना ही लेकिन उसके पीछे नहीं। जैसे कोई घर बहुत दिन से गंदा पड़ा हो और कई परत मैले बैठा हो उसके ऊपर, और आप झाड़ू लेकर एक दिन साफ करने जाएंगे, जब झाड़ू लेंगे तो मिले गए, पहले तो नहीं होता क्यों, आप साफ नहीं करते बेटा, जैसे आप साफ करने जाएंगे तो इसलिए कभी अच्छा काम करने जाएंगे तो बुरा प्रभाव सबसे पहले आएगा, तो उससे अगर आप हट जाए तो असफल रह जाए, तो इसलिए इस अमृत बंधन प्रक्रिया में सबसे पहले बीस निकला, तो भगवान ने संभाल के लिए इसको शंकर जी के पास भेजे, शंकर जी को उनको तो अमृत क्यों पड़ गई, वो नहीं आए और उस भाग के लिए तो अपने आराम कर रहे, तो उनके पास भेजे तो हमसे इधर आ गए, वो मदद कर उनको सम्मान होना चाहिए, तो खूब उनको सम्मान कराया, तो उन्होंने आकर के बीस को कर लिए, तो उसके बाद फिर बंधन जारी रहा, तो एक से एक करके नाना प्रकार के वस्तु निकला, घोड़े हाथी अप्सराए मणि आदि सब निकला, तो उसको प्रायः देवताओं के भाग्य में कम चुका था, असुर ले लिए कोई ऋषि ले लिए कोई भगवान ले लिए कोई लिए, अंत में सौभाग्य की देवी लक्ष्मी निकली और उसको देखकर तो सारे असुर देवता समाज बड़े बेकार हो गए, तो लक्ष्मी जी की देशी उठी सब उनके लिए भेंट लाए, सबसे पहले उनको मनाने के लिए बहुत बहुत भेंट लाए, विशेष भेंट देकर विशेष उनको अभिषेक किया गया, विशेष अभिषेक के बाद लक्ष्मी जी वर्णमाला लेकर के अपने पति को ढूंढने के लिए निकली। सब अपना अपना ड्रेसिंग पट्टी पर बैठे हुए, शायद हम अपना सर्टिफिकेट सरकार में करके बैठे हुए, लेकिन लक्ष्मी जी सबको देखते देखते सब रिजेक्ट कर देते। आप तो हैं तपस्वी तो हैं, लेकिन क्रोध को सुना आप क्रोध को कंट्रोल करते ही आ, लेकिन काम को नहीं किया आपने ऐसा किया। लेकिन बहुत गरीब है, वो अमीर है, लेकिन किसी साथ नहीं था। ऐसे नाना प्रकार के दोस्त दिखाते दिखाते सारे एक तरफ असुर से सुरों से सब को रिजेक्ट करके सब नीचे मुंह करते थे, कोई शक नहीं है, सब एक तरफ बैठे थे। अंततः लक्ष्मी जी आकर के लास्ट में भगवान अजीत वो भी देवता गोष्ठी में बैठे थे, उनके पास पहुंची। भगवान ने भी दोष निकाली है क्या कि ये सारे असुर सुर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और मैं वैसे दोष देकर रिजेक्ट कर दी, लेकिन उनके पास कोई दोष नहीं है, लेकिन एक ही दोष है कि मुझे चाहते हैं, मैं उनको बुरी तरह से चाहती हूं, लेकिन वो मुझे चाहते हैं। मैं माला लेती हूँ, मेरे चरण खड़े हूँ, पुराण करने के लिए मुझे देखते ही पड़ी नहीं। ये इतने उदास है, उनको कोई पड़ी नहीं आज। तो ये भगवान की अक्षर प्रकार में उनके प्रशंसा या स्तुति है। तो स्तुति करके अंतर बोले कि ठीक है, जब मैं नहीं चाहता तब भी उन्हें मारा डालूंगी। बोले क्यों? बोले भगवान के कोई विशेष गुण है कि जो भगवान को पसंद करे या ना करे, अगर भगवान के चरण में शरणागत हो गया तो भगवान उनको छोड़ते नहीं, शरण दे देते हैं, शरण दे देते। ये विशेष गुण भगवान का है, भले कुछ भी हो एक बार आ ही गया तो आपके पास उनको सिलेक्ट कर देते। बोले इस प्रकार भले मैं रिजेक्ट चुके क्यों ना हूं, मैं उनके शरणागत होती हूँ तो मुझे तो रिजेक्ट नहीं करेंगे उनके क्वालिटी। इसी गुण के कारण लक्ष्मी जी ने भगवान को वरण किया, बोले मुझे अगर पसंद करो ना करो, लेकिन मैं आपको पसंद करती हूँ, तो जब शरणागत हो गई आपके तो मुझे तो रिजेक्ट नहीं करेंगे आपके स्वभाव। इस स्वभाव को भरोसा करके लक्ष्मी जी ने भगवान को वरण की और सब देवता से बोल गए इतने सारे काम के हो गया नहीं मिला और चलो अमृत का आशा फिर जारी रखे और मंथन जारी रखे और अब फाइनल स्टेज आया, फाइनल एग्जाम अब लास्ट स्टेज है। बिल्कुल लास्ट स्टेज में अब आशा रखते देखा तो भगवान धन्वंतर विशेष सुंदर रूप धारण करके धन्वंतर भगवान ने अमृत कलश लेकर उठे। उसके लिखा होगा सामने अमृत कलश, नहीं तो किसी पहचान नहीं होती अपने जो काम करते खींच रहते वासुकी ना की छोड़ दी। अब क्या काम भूल गए हम, खुशी के मारे देवता भी खुशी हुए थे असुर, लेकिन असुर इतने चालाक थे खुशी होकर गए भगवान के हाथ से कलश छीन कर लिए, सील का खुला नहीं किसी चीज का देवता को देखते ही रहे भगवान हाथ से छीन लिए। देवता बोले तो बड़ोशाली मार के पीटे के तो देंगे नहीं, लेकिन हम इतने मेहनत की कुछ नहीं लेकिन हम सब जा करके भगवान के पास गए। जब पास देखी आप आपको बोलते हैं कि धैर्य धरो धैर्य धरो चुप करो बैठो बैठो तो क्या आगे लेकर मुझे कुछ चुप बैठो चुप ना क्या कहे मुझे रोग मत लगा चुप बैठो ना क्या सारे नहीं भरोसा रखो। तो इस प्रकार भगवान को पूर्ण भरोसा रखकर धैर्य रखकर के बैठते हैं, भले रोना में बैठे नीचे करके रो लो, लेकिन इसे झगड़ा झाटी मत कर चुप से हमें धारण करो। तो भगवान कैसे काम मानते हैं वो तो विश्वास नहीं कि कैसे काम छठ ले ली, लेकिन ले तो ले पूरे असुरों की गोष्ठी का पूरा क्या अमृत बटल ले गए, ले करके उनके अंदर झगड़ा हो गया पिएंगे कौन था अहम ऊपर अहम पर हम तो मैं सीनियर हूँ मैं फर्स्ट क्लास यू से आप कभी पहले क्लास में बैठेंगे हम पहले क्लास में बैठेंगे अच्छा सील खोलने रहते आपस में झगड़ गए पीने के लिए, बोतल ले चुके उनके पास में था लेकिन भाग्य में पी नहीं पा रहे थे, लेकिन आपस में झगड़ रहे थे कौन खेले पिएगा। इसी समय इतने बड़े भारी डिस्प्यूट के बीच में और भड़ झगड़ा छिड़ गया। इसके बीच में भगवान ने लक्ष्मी जी अभी भी सती की थी, जिस लक्ष्मी के रूप को देख करके समस्त संसार के सारे सुर असुर मोहित हो चुके थे, उस लक्ष्मी के बगल में भगवान खड़े थे, देखते देखते घटना स्थल पर ऐसे मेकअप किए ऑन द स्पॉट ऐसे मेकअप किए और मेकअप करके चले इंस्टेंटली, और असुर लोग जो अमृत पटल लेके झगड़ा कर रहे थे उनकी नजर पड़ा, एक नजर पड़ा उनके हांसी के ऊपर, अमृत बेकार हो गई, अमृत फीका पड़ गया, ये अमृत अमृत ये अमृत। मोहित देव उनके ऊपर हंसते हंसते पास में आ गए, सारे असुर और सब पिंड सारे लोग के सामने आ गए, पूछने लगे किसकी है कहाँ की है, पसंद लगे मैंने कुछ बोली नहीं है, जैसे कोई बात नहीं नहीं बोलते थे हम पूरे फिर करते हैं आप हमारे लिए विधा करें आपको हमें भी है तो मोहन देव को लिखना बोले देखो आप लोग सब कश्यप पुत्र हैं, इतने खानदान बड़े खानदान के हैं, बहुत बड़े उनके हाईले एजुकेटेड हैं, तो आप ये की युवती स्त्री जिसका धरना घाटी आपको पता नहीं एड्रेस और यंग स्टेज में घूम रही है इसी स्वच्छा चारणी है, उसके ऊपर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, नीति शास्त्र मना किया गया, सारे फंड देते बताया समझा है देवता में बड़े बड़े देवता सो कैबिनेट मिनिस्टर से बैठे थे बड़ी महान सब सामने बोलते हैं बस 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 और हम आपको इतने परिहास मत करो देवी, हम समझ गए आप स्वच्छाचारिणी हो ही नहीं सकते, आप तो 100% प्योर है, क्यों बोले जो स्वच्छाचारिणी है तो कभी आपने मुख से स्वच्छाचारिणी आपने नहीं कही, वो कहेंगे तो मैं कभी तो नहीं से, लेकिन आप स्वयं अपने मुख से कहती है मतलब आप पूर्ण न कभी, तो इसलिए आपको तो पूछना जरूरत नहीं, हम तो मान गए आप ही हमारे लिए है 100% है तो बोले आप लेकिन झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं अमृत पटल लिए थे इसकी वजह से कौन बोलेगा, बोले आप कहेंगे आप ही
क्या संग्राम जानते हैं बुरी तरह से यही कहा
मोहिनी देव जैसी क्रिया मुद्रा आप जगत में जैसे मोहिनी रूप में आएंगे सब वही है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ माँ के शब्द लिखे नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि प्रभुपाद जी ने श्री को कहते हैं कि उनको ईश्वर ऑलवेज कंसीडर देवास मदर। इसी चाणक्य जी नीति शास्त्र में कहते हैं कि विवाहिता अन्य स्त्री अन्य विवाहिता स्त्री को मातृपद पर आदेश पर स्त्री को मातृपद देना चाहिए, लेकिन यहाँ माँ के शब्द लेके बोलते हैं कि बेटी और एक पत्नी कि इस अलावा दूसरा पोस्ट कोई नहीं है, जिन्होंने आखिर किया है उन्होंने इसे लिखा है कि पोस्ट दूसरा कोई नहीं है, दूसरा क्या पोस्ट होना चाहिए। जो सचमुच वैदिक नीति धर्म को शास्त्र जानते हैं एक स्त्रियों का यही पोजिशन होना चाहिए बचपन से बेटी के रूप में माँ बाप के संगठन में रहेगी, फिर युवती अवस्था में एक पत्नी के रूप में पति के संगठन में रहेगी, बड़ी हो जाने के बाद में एक माता के रूप में पुत्र के संगठन में रहेंगे। हमेशा संगठन की आवश्यकता है, बिना आश्रय न बदलते कभी काम नहीं कर पाता, उनका आश्रय बिना कैसे टिक सकते। लेकिन ऐसे तभी जमाने में इस प्रकार की उनका मेंटेलिटी था, इस प्रकार भावना था, इस प्रकार के आखिर किए थे प्रभुपाद जी के ऊपर। तो प्रभुपाद जी ने इसे आखिर को सुनकर हंस करके बोले जिन्होंने इसे कहते हैं उन्होंने क्या कवाच्य है, बोले क्योंकि एक पद में वर्गीकरण नहीं किया मैंने, एक बेटी एक पत्नी एक माँ इस प्रकार से स्त्री में देखता हूँ, विषय रूप में नहीं देखा, इसे कहते हैं हम इस छोटे पोस्ट को इसी वेरी इंपोर्टेंट पोस्ट हमें भी पोस्ट नहीं रखा। प्रभुपाद जी बोलते हैं हंस करके पोस्ट डाल यही वर्गीकरण नहीं हुआ। बोलते हैं आजकल जगत में ये माता जी बैठे क्षमा करें मेरा नहीं, प्रभुपाद जी के जो भाव मैं इसे बताना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्रियों को केवल दो ही योग्यता होना चाहिए, एक विश्वास योग्य सेवा कारिणी पति परायणा अपने पति के प्रति सहयोगी होना चाहिए, सत्यनिष्ठ पत्नी कैसे अपने पति के प्रति पूरे विश्वास रखकर उनके सेवा करें, कोई मेरे पति है कोई मेरे सब कुछ की भावना मन में आए ये शिक्षा होना चाहिए। दूसरा बहुत बढ़िया कुक होना चाहिए, कुकिंग बचपन से 7-8 साल से किचन में जाकर कुकिंग करना हर प्रकार का आइटम बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि 15-16 साल तक उनको पक्का कुक बन जाना चाहिए और 15-16 साल में उनका विवाह हो भी जाना चाहिए। यही चीज अगर केवल ये दो ही गुण किसका होगा, अच्छा खाना पकाने वाले हो और एक विश्वास योग्य सेवा पारायण हो, वही दो ही गुण इतने महान है उनको स्त्री में उनको कोई आवश्यकता नहीं है। भाई भले उनको रूप कैसे क्यों ना हो, भले वो कोई गुण ना हो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन एक अच्छे पति उनको प्राप्त होंगे उनके जीवन में, लेकिन ये दो गुण को छोड़ करके बाकी कई प्रकार के ट्रेंड अप पीजी और क्या क्या सब जो डिग्रियां सब इकट्ठा कर लो ना तो एक अच्छे पति मिलेंगे ना जीवन में सुख नहीं कैसे हो। अब आजकल तो ये चल पड़ा नियम कि कोई शादी करने नौकरी कर रहे हैं नहीं, और नौकरी करने वाले नौकरी नहीं होना चाहिए दोनों नौकर बनेंगे, अब वो अपने जॉब में जाएगी वो अपने जॉब में जाएगी, अब आजकल तो जॉब 7-8 बजे से पहले छूटते नहीं, 8 बजे आएंगे घर के मान ले कौन बुकिंग करेंगे कौन बुकिंग करेंगे झगड़ा करेंगे जब होटल चुका कर जाएंगे और क्या करेंगे वही हाँ सुबह उठते रात होकर खा लेंगे ये दुष्कारे। शादी किया शादी करने का मतलब आप वही नियम यज्ञ के सामने है ब्राह्मण के सामने है और सबको साखी रख करके हम ये वचनबद्ध होते हैं कि ये मेरे पति है उनको प्रणाम करते हैं कि उनको जीवन पर्यंत उनको पति के रूप में उनके सेवा करूंगी उनके सामने और उनके सेवा क्या करेंगे सेवा तो पहले से कर रहे थे और किसी कंपनी में सेवा उनकी सेवा पूरा दिन दूसरे तो उनको कहा कि वर्ण किया वर्ण तो पहले कर चुका है दूसरे किसी सेवा करने की यही होना चाहिए। सेवा तो केवल उनके जाप पूरा पूरा होना चाहिए पति के उनकी प्रसन्नता के लिए और वो प्रसन्नता छोड़ कर उसे किसी प्रसन्नता के लिए सेवा करेगी तो कैसे सुख शांति कैसे मिल सकता, हो ही नहीं सकता आपस में कोई मिल नहीं। अभी अभी मोहिनी जी की शिक्षा से किस प्रकार दिए, अब सीता नवमी में सीता जी से, सीता जी के चरित्र ऐसा है कि भगवान ये लीला में अनेक कुछ सिखाते हैं। भगवान के नित्य प्राणवल्लभा भगवती सीता अयोध्या है, भगवान उनके प्रति ऐसे कठोर व्यवहार कैसे कर सकते हैं जो स्वयं करुणा सिंधु है, जो इतने शिव स्वभाव है। तो आपने प्रेयसी सीता के प्रति ऐसे कठोरता बरत सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपने पत्नी सीता के द्वारा इस संसार के समस्त स्त्रियों को नारी धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। कुछ ऐसी घटना का लीला जब वनवास तो केवल भगवान को हुआ, कैकेयी जी चक्रवर्ती ने वन में जाने के लिए दशरथ महाराज से वचन मांग लिया राम वन में जाए, सीता जी के थोड़ी नहीं, लेकिन भगवान राम आकर के सबसे परिश्रम की सीता जी को बोले कि मुझे आदेश स्वामी बन जा रहा, आप घर में रहिए, कोई कमी नहीं, हर प्रकार से आप चाहे पूछे करना चाहें करके जाता हूँ, अब जो आप सकता है सब आप सास ससुर की सेवा करो, पिताजी की तबियत खराब थे माता से देखभाल करो, अगर दिक्कत भी हो भगवान राम यहाँ तक भी सुविधा देखिए, अगर आपको दिक्कत हो भरत जी को एक कन करे आपको आप अच्छा ना लगे तो आप अपने घर में भी जा सकते हैं, मिथिला भी जा सकते हैं, ये भी परमिशन दे करके सारे जिस प्रकार दिनचर्या और स्त्री धर्म का बारे में शिक्षा दे करके जाना चाह रहे हैं। सीता जी बोले एक बात मृत सुन लीजिए, आप जल्दी जाना चाहते हैं तत्काल में आपको जन मन में जाना है, मेरा एक ही बात सुन लीजिए, मैं आपके धर्म पत्नी हूँ। बोली रो रो कर सीता जी ने बोली, बोले मुझे आप स्वयं धर्म के हैं, आप मुझे स्त्री धर्म की शिक्षा देते हैं, क्या विवाहित स्त्री का ही धर्म है? विवाहित स्त्री के लिए सास ससुर देवर पुत्र पुत्री इसका कोई मतलब नहीं, सारे संपर्क तो पति के नाते हो, पति ना हो उसको आया है, और पति जाएंगे जंगल में दुख में नंगे पैर में भटकेंगे, और मैं इस राज भवन में राज सुख लूंगी, ये स्त्री धर्म है? आप कैसे इस बात पे भगवान निरुत्तर हो गए उनके सामने, उत्तर नहीं था भगवान के पास, मानना ही पड़ा। ठीक चलो तो यहां तक कहने बोले, अगर आप मुझे कठोर जवाब दोगे नहीं नहीं जा सकती घर में, तो मैं आपका आगे उल्लंघन तो नहीं कर सकती, मैं रह जाऊंगी घर में, लेकिन आप घर में रह करके जो काम करने के लिए बोलते हैं, जो धर्म पालन करने के लिए, धर्म पालन कैसे हो सकता? बोले क्यों क्यों नहीं कर सकती? बोले मुझे छोड़कर आप चले जाएंगे एक क्षण के अंदर इस शरीर से प्राण, तो एक डेड बॉडी धर्म पालन कैसे कर सकती है? सबके द्वारा कोई धर्म आचरण का आसन नहीं किया जा सकता, जब आप जीवित रखना चाहते हैं और जीवित सही स्त्री धर्म में सभी के कितने भी जो मुझे बोले जो पिता दे रहे थे जनक महाराज सुनैना देवी कन्यादान लेते समय जो अंतिम विदाई दे रहे थे तब बोल कर बेटी आज से तुम्हारा ये सब कुछ है, भी उनका घर तुम्हारा है, उनके सहधर्मणी उनके सहचारिणी बनकर रहो, उनके सुख में सुख उनके दुख में दुख, तो आप मुझे ही सिखा, मैं क्या इतने तुच्छ हूं आप दुख में रहकर मैं आपके साथ नहीं रह सकती? भगवान को उनके सामने मान करके उनका आक्षेप करना था, इतने पति परायण कितने शुरू से राजकुमारी है, इतने सुकुमारी लेकिन फिर भी वन में इतने दिन रही रह करके भगवान के साथ में, इतने सत्य पतिव्रता सत्य प्रति और पति परायण थी, लेकिन फिर भी उनको जो रावण अपहरण करके ले गया और भगवान ने युद्ध किए लंका विजय करके रावण वध किए, वध करके आप जब भीषण प्रारंभ बन चुके थे पहले तो अंत सारे बैठे में सब मिल करके सीताजी को मुक्ति के लिए भेजे। भीषण हनुमान गए सीताजी के लिए प्रभाव हरी सभा के बीच में सीताजी के जो लाया गया सीताचार्य प्रश्न चित्त थी कि प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे सब मुक्त किए मुझे। लेकिन जैसे पूरी सभा के बीच में सीताजी आई तो भगवान ने तुरंत बोले हे वैदेही सुन लो मैं एक क्षत्रिय के क्षत्रिय राजा के कर्म किया। एक राजा हूं एक क्षत्रिय हूं मेरा धर्म था एक स्त्री अपहरणकारी दुराचारी रावण को दंड देना था उसको वध किया मेरा कर्तव्य मैं किया। जहां तक आपको अंगीकार करने का सवाल है आप इस राक्षस दुराचारी रावण के यहां इतने दिन रहे मैं कैसे स्वीकार कर सकता आपका पवित्रता का परीक्षा देना पता क्या नहीं पता था उनको इतने दिन तक अशोक वाटिका में जब थी सीता जी ने तब अहर्निश निरंतर केवल श्री राम को चिंतन करते थे एक क्षण के लिए दूसरे को चिंतन नहीं था भगवान के बाद पता अच्छा था यही सत्य के कारण तो रावण को कितने फटकारते थे पूरी बात करके सामने लेकिन फिर भी राम सभी के सामने पब्लिकली उनको बोले आपने स्वीकार नहीं कर सकता हूं आप चार शक्ति का परीक्षा देना अगर आज का जितने भी बहुत उच्च शिक्षित महिलाएं हैं अगर उनको अकेले की बात छोड़ो अकेले में भी गुस्सा होगा पब्लिक में उनको कोई बोल दे उनकी पवित्रता के ऊपर उनके ऊपर आखिर आरोप लगा दे तो चंडी बन जाएंगे तुरंत बोल देंगे आपको भूलेंगे नहीं तुरंत। लेकिन धन्य है सीता जी यद्यपि शत प्रतिशत पूर्ण पवित्र थी लेकिन तब भी मुझसे नहीं निकाली भरी सभा में उन्होंने तुरंत भाग छोड़ करके स्वामी की बात को स्वीकार की लक्ष्मण लक्ष्मण अग्नि संयोग सुख लकड़ी ला करके अग्नि के संयोग किया गया और जलती हुई आग में हजारों देखने वाले के बीच में उस रोमांचित बीच में सीता जी ने श्री राम के श्री चरण को स्मरण करती हुई अग्नि की प्रदक्षिणा की और जलती हुई आग में प्रवेश कर गई। आज तक इतिहास में अद्भुत अनुभव घटना जलती हुई आग में शीतल हो गई सीता जी के स्पर्श से ब्रह्मा जी का प्रकट हो गए उनके पवित्रता का प्रमाण दे कोई दोष नहीं ऐसे पति के बाद तो कितने भी आक्षेप लगाए कितने बुरे भले कहे अकेले नहीं बेडरूम में नहीं पब्लिकली तब भी कोई शब्द उनके विरुद्ध नहीं पति प्राण इससे क्या उससे भी और कठोर परीक्षा गए। अब राजरानी के रूप में सीताराम को हजारों वर्ष भी लगभग राज किए लेकिन एक छोटा सा कोई साधारण व्यक्ति का आखिर सुन करके भगवान ने लोग बात को भय से सीता जी को गर्भवती अवस्था में वन भेज देते वास कर दिए। आजकल की ऐसा कोई सोच भी सकता है केस में सोचा नहीं कर दिया उनको और कोई व्यवस्था भी नहीं किया जंगल में दिख रहा है बेचारे भटक हुए बाल्मीकि आश्रम के शरण में रहे वहीं लवकुश के जन्म हुए। उसके बाद में लवकुश का पता चल जाने के बाद सब कुछ अयोध्या वासी समझ लेने के बाद सब कुछ हो जाने के बाद जब बाल्मीकि आश्रम से वापस आए तभी भी हरि सभा में भगवान बोले कि देवी मैं लोक अपवाद के भय से भयभीत हूं इसलिए और एक बार आपको तब भी सीताजी कुछ नहीं बोली एक आश्रम में इंद्र ने कहा पर कुछ नहीं बोली। यहां तक कि ऐसे वर्णन आता है महर्षि वाल्मीकि कूद पड़े भरी सभा में चिल्ला कर बोले बोले वैसे ही नहीं बोलोगी मैं बोल रहा हूं मैं महर्षि वाल्मीकि बोल रहा हूं आजीवन कठोर तपस्या किया हूं वेद के श्रद्धा से धर्म आचरण किया हूं मैं दावा करके कहता हूं ये सीता उसके उसके अंदर अणुमात्र भी अपवित्रता नहीं, अणुमात्र अगर उसके अंदर अणुमात्र भी दोष आए तो मेरे सारा जीवन का तपस्या व्रत सदाचार सब हो जाए। ये दावा करते थे सारे उठ करके उस सृष्टि किए, लेकिन फिर भी सीधारी इसकी नहीं मानी। अपने पति जब चाहते हैं तो मैंने ठीक आप चाहते हैं तो उनके सभी के सामने भूमि देवी को प्रार्थना की और भूमि तो किस प्रकार कितने कितने घोर कठोर स्थिति में भी उन्होंने अपने अपने जो गुण है उसमें कोई आचरण नहीं दी। ऐसे स्त्रियों पर गुण होना चाहिए। आज भी हम जाते हैं कहीं तो सीता रोसाई में रहता है, सीता का मकान लिखा नहीं है। हम अभी बिठूर में गए थे और जो बटपुर के है इतिहास एशिया में सबसे बड़ा बटपुर के वही है गंगा किनारे वहाँ पर बिठूर में वहाँ पर हम गए थे सीता रोसाई। यहाँ पर सीता रोसाई सीता रोसाई की सीता जी की विशेष गुण था क्या सीता जी सीता रोसाई ब्रज में जाओ राधा रानी के यहाँ रोसाई करते तो स्त्रियों के एक जन्मजात विशेष गुण जो होना चाहिए जो स्त्रीत्व को प्रमाणित करती है वो है कुकिंग। अब उसको तो कोई सीखे नहीं, वो मेरे सब हाथ आंच लगेगा जल जाएगा हम कंप्यूटर चलाएंगे कुकिंग करते थे कंप्यूटर से चलते जैसे आजकल लोग खेती भी कंप्यूटर में करते हैं तो कुकिंग कंप्यूटर तो ऐसा नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये प्रभुपाद जी ने जानते थे धर्म की कार्य की नीति इसलिए जानते हैं स्त्री धर्म का यही होना चाहिए। स्त्रियों का अगर यही दो योग्यता हो अब अच्छे कुक हो और विश्वास योग्य हो तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सफलता होगी। नहीं और यहां तक प्रभुपाद जी ने स्वयं चैलेंज करके कहते हैं कि मैं जवाबदारी लेता हूं उनके लिए एक अच्छा पति ढूंढने का काम प्रभुपाद जी अपने ऊपर लेते हैं। जैसे भगवान ने गारंटी देते हैं अगर तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामे तुम शरणं व्रज तो सब छोड़कर मेरे शरण में आओगे तो हम काम सर्व पापेभ्यो क्षामी धर्मात् मा शोच ये भगवान की गारंटी। तो भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की गारंटी देखिए पुरुषों के लिए नहीं स्त्रियों के लिए प्रभुपाद जी गारंटी की करते हैं। कोई आपको तपस्या तपस्या मंगलारती ये सब नियम कुछ नहीं करना चाहिए कुछ भी करो ना तो नहीं ओनली टू थिंग्स ही और दो ही काम अगर स्त्री कोई करेगी तो अपन आराम देने पर्सनल रिलेशनशिप के रूप से दावा की जवाबदारी लेती है। अगर कोई स्त्री विश्वास योग्य बने और अच्छे रूप बने तो उनके जीवन को सफल करने का दायित्व भगवान कृष्ण दोनों को छोड़कर बाकी 2000 करोड़ इकट्ठा कर लें कोई कीमत नहीं। साड़ी आप वैष्णव सेवा निस्तार पैसे कर किसी निस्तार नहीं तो इससे समय भी ज्यादा नहीं। तो आज इस पवित्र महीने एकादशी तिथि जैसे मोहिनी देवी ने अपनी प्राप्त लक्ष्मी जी वहीं खड़ी थी वो भी देखती रह गई क्योंकि उनसे भी अति और सुंदर थी। इस प्रकार इस रूप में अगर देखेंगे तो मोहिनी देवी का जो प्रोजेक्ट था आप देखिए बुरी तरह से फंसाएगी एक बार बुद्धि आउट हो जाए और देखते देखते आपके सामने चिटिंग करेगी और पिटेगी गला काटेगी। और दूसरे रूप में भगवान की सीता जी मदारी अपने जीवन को तड़क्रांत करके सब कुछ सह करके कितने कितने कठिन परिस्थितियों में पति का साथ दे रहे तभी उनका नाम इतिहास में अभी तक क्या बोलते इसी गुण के कारण। तो इसलिए कम से कम आज इस पवित्र एकादशी तिथि में हम इतने बैठे हैं मातृगण है प्रभुगण भी है सब पक्षों सोचना चाहिए समाज में इस बात को समझा लोगों को जो है वर्ण पालन करना चाहे जो नहीं करे उनको भी समझाए क्योंकि एक दो गुण
क्योंकि समाज में जो नारी जाती है, आप यहाँ कह रहे 50% स्त्रियाँ, मुझे लगता है क्योंकि वो तो मोर देन 50% है ना। तो जो भी हो, एवरेज 50% अगर माना जाए, लेकिन स्त्रियों को बहुत बड़े शक्ति हैं वो, तो उनको जो आवश्यक गुण होना चाहिए, ये दो गुण अगर स्त्रियों के पास होगा तो समाज अपने आप में सुधर जाएगा, अपने आप में समाज निष्कलंक हो जाएगा, समाज पवित्र हो जाएगा, क्योंकि पूरे समाज का प्रगति और पवित्रता का पूरा पूरा दायित्व स्त्रियों के ऊपर। इसलिए कहा गया शास्त्र में जननी जन्मनाम गुरु, जन्म से गुरु तो मान ही होता है। इसलिए अब कोई भी देश में जाए, जो अपने भाषा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उन्होंने, मदर टंग, फादर टंग, ब्रदर टंग तो नहीं कहते, मातृभाषा, माँ की भाषा, माँ से सीखना था, माँ प्रथम गुरु ही, वो जैसे सिखाएगी, अगर पिता को डैड बोलो डैड बोलेंगे, पिता बोलो पिता बोलेंगे, बाप बोलो बाप बोलेंगे, जो सिखाएंगे मातृभाषा। तो इसलिए माँ की अगर वो सही नहीं होगी तो संसार, जितने अर्जुन ने भगवद गीता का प्रथम अध्याय में उनका बड़े शंका उठाए थे, हाँ जो कारण दिए थे मैं नहीं लड़ूंगा करके, उसमें एक बड़े मुख्य कारण था कि ये लड़ाई में आजकल तो हम सारे आजकल कुछ भी हम लड़ाई में जाते हैं, तो लड़ते तो है नहीं, लड़ाई से घर बैठे कर होता है, लेकिन जो धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध में केवल पुरुष ही भाग लिए थे, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र महायुद्ध में महाभारत युद्ध में केवल पुरुष ही, दोनों तरफ से 18 अक्षमणि पुरुष और बाकी आश्रम सब पुरुष ही भाग लिए थे, एक स्त्री नहीं। तो अर्जुन ने बोले हम तो मरेंगे अगर लड़ाई करके आपस में मर जाएंगे तो बचेंगे कौन संसार, छोटे बच्चे बूढ़े और ज्यादा संख्या स्त्री, और उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है संरक्षण का, वो अकेले वो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, उनको संरक्षण का आवश्यकता है, अगर कोई संरक्षण करने वाला उनका ना हो, वो अगर स्वच्छाचारिणी हो जाए तो समुच्चा संसार नारक हो जाएगा, नरक हो जाएगा, ये अर्जुन का स्टेटमेंट है ना, नरक की स्थिति हो जाएगा करके अर्जुन, तभी भगवान सरस्वती की स्थिति हो जाएगा, हो जाएगा। केवल एक वर्ग को अगर सही से संरक्षण नहीं दिया जाए, अगर वो स्वच्छाचारिणी हो जाए, संपूर्ण समाज नारक की स्थिति पैदा हो जाए। आज हम देखी ना, तो चाहे गीता कहो चाहे भागवत कहो चाहे किसी प्रकार के कहो, सब इसी बात को कहते हैं, अगर अभी दो ही चीज को अपना जाए, उनको शिक्षा दिया जाए, उनको उनको प्रेरणा दिया जाए, तो हम लोग वो लोग समुच्चा संसार बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हरे कृष्ण।
प्रश्न ऋषि जो है, लेकिन एक बात और भी